آج کی تاریخ ہے
8/1/1988 کی 68 کی مرلی
مانا جب بابا جیوت تھے اس سمے کی چلائی ہوئی اوریجنل مرلی باپ بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں کھڑے ہو کے سمجھاتے ہیں چلتے ہوئے سمجھاتے ہیں یہ بیٹھ کیوں بولا باپ تو بندو کا نام ہے سپریم سول جیوتی بندو باپ کہا جاتا ہے وہ بندو بندو آتماؤں کا باپ ہے تو وہ باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں بندو بھی بیٹھتا کھڑا ہوتا ہے پھر مانا کوئی تن میں پرویش کر کے بیٹھ کر سمجھاتے ہیں کہ سناتے ہیں پہلے سمجھاتے ہیں پھر سناتے ہیں پہلے سناتے ہیں بعد میں سمجھاتے ہیں لیکن بیٹھ کر سمجھاتے ہیں سناتے بھی بیٹھ کر ہیں کسی میں اور سمجھاتے بھی ہیں کسی میں بیٹھ کر دوسری کوئی بھی سنستھا نہیں ہوتی جو کہ کہے کہ باپ بیٹھ بچوں کو سمجھاتے ہیں بچے جانتے ہیں کہ برابر سب بچوں کا باپ ایک ہی ہے سب بردرہڈ ہیں اس باپ سے ضرور بچوں کو ورثہ ملتا ہے کس باپ سے اس باپ سے نہیں جس برہما کے تن میں بول کر سناتے ہیں اس سے ورثہ نہیں ملتا یہ باپ ہے بھی نہیں ورثہ کس سے ملتا ہے اس باپ سے ضرور بچوں کو ورثہ ملتا ہے ضرور کہہ کے کنفرمیشن کر دی چکر پر بھی تم اچھی ریتی سمجھا سکتے ہو کہ یہ ہے سنگم یوگ سنگم یوگ جب کی مکتی اور جیون مکتی ملتی ہے ایسے نہیں کہ ستیگ میں جائیں گے تب ہی جیون ہوگا اور جیون میں مکتی ہوگی نہیں کہاں ہوگی سنگم پر ہی مکتی ہوگی دکھ دردوں سے اور سنگم پر ہی جیون میں رہتے ہوئے مکت انبھو کریں گے ایک تو ہوتی ہے مکتی شریر ہی چھوٹ گیا دکھ دردوں سے مکتی ہو گئی اور ایک ہوتی ہے جیون مکتی مانا جیون بھی رہے اور دکھ دردوں سے مکتی بھی رہے پہلے کیا ہوگی پہلے جیون مکتی ہوگی آدمی کا شریر جلتا ہے کوئی انگ جلنے لگتا ہے تو پہلے وہ رس گلا کھانا چاہے گا اس کے ہاتھ میں رس گلا رکھ دو رس گلا کھائے گا یا پہلے جلتا ہوا ہاتھ ہٹائے گا تو پہلے دکھ سے مکتی چاہنا ہر آدمی کی چاہنا ہوتی ہے دکھ سے مکتی بعد میں جب تھوڑی شانتی مل جاتی ہے دکھ سے مکتی ہو جاتی ہے پھر اچھا ہوتی ہے سکھ بخار آ جاتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا اور بخار سے چھٹکارا ملے سارے شریر میں درد ہو رہا ہے اس سے چھٹکارا ملے تو دکھ سے چھٹکارا ہونا پہلی شرط اس کے بعد چھٹکارا جب ہو جائے پھر آتما چاہتی ہے میں سکھ بھوگوں اور شریر میں رہتے ہوئے سکھ بھوگوں تو مکتی جیون مکتی سنگم یوگ پر ملتی ہے یہ انبھو بھی کہاں ہونا ہے संगम युग पर ही हम बच्चों को मुक्ति का भी और जीवन मुक्ति का भी अनुभव करना है। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाओगे क्या? तुम कहाँ जाओगे? मुक्ति में नहीं जाओगे? अरे हम तो यही परमधाम को इसी षष्ठी पर उतार लेंगे। माना इस षष्ठी पर रहते हुए ही हम निराकारी निर्विकारी निरहंकारी तेज का अनुभव करेंगे। शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज होने के कारण निसंकल्प की स्टेज हो जाएगी, न सुख और न दुख। ऐसी जब स्टेज हो जाएगी आत्मा की तो निराकारी कही जाएगी, वो मुक्ति की स्टेज हुई। लेकिन बताया मुक्ति की स्टेज तक ही नहीं, तुम तो इस दुनिया में जीवन मुक्ति अनुभव करोगे, बाकी तो सभी मुक्ति धाम में बैठ जाएंगे। बाकी माने कौन? बाकी माने वो जिनके सन्मुख बैठकर बाप तुम नहीं बोलता है। क्या तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख होते हैं उनसे तुम कहा जाता है। तो तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाओगे, जिनके सामने बैठकर बाप बोलता है उनसे कहता है तुम तो जीवन मुक्ति में जाओगे। माने सन्मुख बैठे हुए बच्चे जीवन मुक्ति में जाएंगे, और जो सन्मुख नहीं बैठने वाले, सन्मुख आने वाले नहीं हैं, वो कहाँ बैठेंगे? मुक्ति धाम में जावे बैठेंगे। सदगति दाता लिबरेटर गाइड उनको ही कहा जाता है, इनको नहीं। इनको माने किसकी तरफ इशारा? उनको माने किसकी तरफ इशारा? उनको माना जो आगे आने वाला पार्ट। ये तो वाणी चली है 67 में, जब बाबा जीवित थे जनवरी में। 8 जनवरी की वाणी है ना, तो उस समय तो बाबा जीवित थे। तो उसके अंदर बैठकर सुप्रीम सोल ने बोला कि इनको नहीं कहा जाता है सदगति दाता लिबरेटर, किनको कहा जाता है? उनको कहा जाता है जो पार्ट आगे बजने वाला है। कई कई बहुत अच्छी पॉइंट्स होती है। रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम के राज्य में सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी किसका राज्य? शिव बाबा का राज्य। शिव बाबा राज्य भी करता है? शिव बाबा तो राज्य करता नहीं है, शिव बाबा तो प्यार ही प्यार करता है। बहुत से बच्चे अवज्ञा करते हैं, बाबा देखता है ये अवज्ञा करते हैं। कई साल हो गए, 65 साल हो गए, बाबा चला तो नहीं गया। बाबा है, अवज्ञा करते ही जाते हैं, फिर भी बाबा क्या करता है? बाबा प्यार ही करता है। बाबा कोई शासन किसी के ऊपर नहीं करता। तो रावण राज्य में कितने ढेर मनुष्य हैं, राम के राज्य में सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। आर्य और अनार्य कहते हैं ना, आर्य माना सुधरे हुए और अनार्य माना जो न सुधरे हुए हैं। इस अर्थ को मनुष्य भी नहीं जानते हैं। सुधरायल सो फिर अनसुधरेले कैसे बनते हैं? आर्य कोई भी धर्म तो है ही नहीं, सुधरायल तो ये देवता ही थे। फिर 84 जन्मों के बाद अनसुधरेले बनते हैं। जो ही ऊंचे थे ऊंचे पूज्य, वो ही फिर पुजारी। हम सो का अर्थ भी बाप ने समझाया है। वो दुनिया वाले हम सो का अर्थ क्या बतलाते हैं? सो हम, वो कहते हैं हम वो ही भगवान है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? हम भगवान नहीं हैं। इसका अर्थ क्या है? कि मैं आत्मा वही देवता हूँ। जो अनसुधरेला था वही फिर देवता बनता है, और वही तो देवता, तो अब हम अनसुधरेले बन गए। हम सुख अर्थ भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, नहीं। ये तो विराट नाटक है ना। अब तुम समझते हो कि हम सो पूज्य सो ही फिर पुजारी बनते हैं। हम सो देवता फिर हम सो ही छत्री बनते हैं, लिखा हुआ भी एक्यूरेट चाहिए, सीढ़ी तो जरूर उतारेंगे। ये भी हिसाब है कि पूरे 84 जन्म कौन कौन लेते हैं, कौन कौन लेते हैं, कौन कौन से धर्म वाले पूरे 84 जन्म लेते हैं। सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म में भी जो दो ग्रुप है, एक सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रवंशी, दोनों ही देवताएं हैं। वो दोनों प्रकार के देवताएं 84 जन्म लेते हैं पूरे। बाप कहते हैं कि तुम तो अपने जन्मों को ही नहीं जानते हो, मैं आकर के बतलाता हूँ। क्या ये तुमको विश्वास मैं दिलाता हूँ कि तुम पूरे 84 जन्म लेने वाले हो? औरों को तो ये विश्वास होने की बात है ही नहीं। ये है ही 84 जन्म का चक्कर, उसमें ही हम सो देवता बनते हैं। 21 जन्म तो नामी ग्रामी है, मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल ही बंदर बुद्धि तमो प्रधान है। क्या कहा?
बंदर
कि 84 जन्म कौन लेते हैं, मुक्ति कौन पाते हैं और जीवन मुक्ति कौन पाते हैं, मनुष्य इन बातों को नहीं समझते। अब तुमको सारी नॉलेज है परंतु समझते बहुत मुश्किल से। क्या नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है? तुम बच्चों को सारी नॉलेज तो है लेकिन लेकिन समझते बहुत मुश्किल से हैं। बाप खुद भी कहते हैं कोटे में कोई आकर के इस ज्ञान को लेंगे। क्या कहा? इस ज्ञान को सुनेंगे तो बहुत, लेकिन आकर के बाप के सन्मुख आकर के लें, ऐसे कोटों में कोई होंगे और देवता के धर्म का बनेंगे। इसमें आश्चर्य नहीं खाना चाहिए। चक्र पर तो समझाना बहुत सहज है, वो सतयुग है तो ये कलयुग है। कोई तो सतयुग को देख करके वायरे हो जाते हैं, अरे सतयुग में होते ही बहुत थोड़े हैं। झाड़ छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, इस झाड़ का तो किसी को भी पता नहीं है, और ब्रह्मा की बात पर भी बिगड़ते हैं। बोलो कि ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। जब तक ब्रह्मा नहीं है तब तक ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। और ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? रचना है। तो रचना है, रचना साकार में है तो उसका रचयिता भी साकार में होगा। माना रचयिता वो भी साकार चाहिए जगत पिता, और रचना ब्रह्मा भी जगदम्बा भी साकार चाहिए, सब ब्राह्मण कहे जाए। वो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं पुरुषार्थ करके। ये सभी एडॉप्टेड बच्चे हैं। कौन से? जो प्रजापिता और ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं वो एडॉप्टेड हैं। वो ब्राह्मण तो कुखवंशावली है। वो माना कौन से? जिनके माँ भी नहीं है और बाप भी नहीं है। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है तो ब्रह्मा तो चाहिए ना, तो वो कुखवंशावली ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण मुखवंशावली है, मुख से सुनते हैं तो मुखवंशावली है। बाप तो आते ही है पतित दुनिया में, ये तो पराया रावण राज्य है। बाप को ही आकर के राम राज्य स्थापन करना होता है। क्या वो क्या कहते हैं कि बाप आता है ज्ञान सुनाकर चला जाता है और फिर हम बैठ करके रावण राज्य को खलास करते हैं, राम राज्य स्थापन करते हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं मुरली में? बाप कहते हैं कि सतयुग की राजधानी तो मैं ही स्थापन करके जाता हूँ, इस पुरानी दुनिया का विनाश कोई भी धर्मगुरु मनुष्य नहीं कर सकता। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, कोई भी इस दुनिया का विनाश नहीं कर सका। मैं ही आकर के विनाश करता हूँ और मैं ही आकर के सनातन धर्म की स्थापना करता हूँ और तुम्हारी राजधानी स्थापन करता हूँ। आकर के ऐसे नहीं आऊं चला जाऊं फिर होती रहे, तो किसी में तो प्रवेश करेंगे ना, बिंदु थोड़े ही फुदक फुदक के राजधानी स्थापन करेगा, जरूर कोई निमित्त बनते हैं, तो वो निमित्त भी बताए हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो ब्रह्मा द्वारा राजधानी की स्थापना होगी, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, तो ब्रह्मा तो चाहिए ना, द्वारा नहीं चाहिए, मीडिया चाहिए नहीं। को कहते हैं मीडिया तो शरीर छोड़ गया, सूक्ष्म मतन में बैठा हुआ है, तो सूक्ष्म मतन में स्थापना होगी क्या, सूक्ष्म मतन में राजधानी स्थापन होगी क्या, नहीं। इसी दुनिया में राजधानी स्थापन होती है, इसी दुनिया में ब्रह्मा चाहिए, इसी दुनिया में प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए, इसी दुनिया में विनाश का निमित्त चाहिए, तो शंकर को निमित्त बनाया हुआ है, तो किसी में तो प्रवेश करेंगे ना, जरूर पतितन में ही आना होगा। वो तो देखो ना, झाड़ में एकदम पिछाड़ी में खड़ा है, इनकी जर्जरी भूत तमो प्रधान अवस्था तो है ही ना। बाप भी कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में मैं प्रवेश करता हूं, ये अंतिम 84वां जन्म है, तपस्या कर रहे हैं हम, भला इनको भगवान कहां कहते हैं, भगवान को ही ठिक्कर ठिक्कर में समझ लेते हैं, तो खुद ही ठिक्कर बुद्धि बन गए। बाप कहते हैं कितने मूर्ख बन जाते हो, देवताओं की तो बात ही न्यारी है, अभी तुम ये पढ़ाई पढ़ करके ये पद पाते हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है, इन देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्या कहा, किन देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव के द्वारा बनते हैं, और जो शिव के द्वारा भगवान भगवती बनते हैं तो उनको देवता नहीं कहेंगे, किनको, जो संगम युगी फर्स्ट लक्ष्मी नारायण होंगे उनका टाइटल क्या होगा, भगवान भगवती, फिर उनसे जो जन्म लेते हैं वो क्या होंगे, देवी देवता होंगे। देवताओं की बात अलग है, इन देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, इन माना किन, जब बाबा इन बोलते थे इन देवताओं, तो किसकी तरफ इशारा करते थे, लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ, क्योंकि पवित्र हैं, भगवान द्वारा इनके धर्म की स्थापना होती है, लक्ष्मी नारायण के धर्म की स्थापना किसके द्वारा होती है, भगवान के द्वारा, तो जरूर भगवान भगवती होने चाहिए ना, भगवान द्वारा स्थापना होती है देवता धर्म की, तो चाहिए कौन, जरूर भगवान भी चाहिए और भगवती भी चाहिए, परंतु इनको कहा जाता है महाराजा महारानी, इनको लक्ष्मी नारायण को, इन लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती कहना ये भी अंधश्रद्धा हो जाती है, भगवान तो एक होना चाहिए या दो होने चाहिए, भगवान तो एक होना चाहिए, तो बोला शिव और शंकर का भी तुम भेद बताते हो, शंकर वास्तव में तो कोई पाप कर नहीं सकता है, वास्तव में शंकर को सारी दुनिया का विनाशकारी बताते हैं, तो सारी दुनिया का विनाश करेगा तो पाप नहीं हो जाएगा, है क्यों, क्योंकि वो तो मनुष्यों की जो लिखी हुई गीता है उसमें वो मनुष्य भी इस गीता को लिख चुके हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि आत्मनिष्ठ जो हो जाता है वो सारी दुनिया का विनाश कर दे तो भी उसका कोई पाप नहीं चढ़ता है, आत्मिक स्थिति होनी चाहिए 100%, आत्मिक स्थिति वाला कभी कोई खराब काम करेगा ही नहीं, विनाश किसका होना है, कचरे का होना है या गुलगुल दुनिया का होना है, जो गुलगुल बन जाते हैं सुधरेले बन जाते हैं उनका विनाश नहीं होता, लेकिन जो अरगंठे बांध करके बैठे हैं, गांठ बांध लिया है कि हम सुधरेंगे नहीं, तो उनका विनाश हो जाता है, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि शंकर पाप करता है, पाप का काम किया है या पुण्य का काम किया है? है? जो दुष्ट है उनको दंड देना ये राजा के लिए पाप होता है क्या? नहीं। इसलिए शंकर को विश्वनाथ कहते हैं। क्या? सारे विश्व का नाथ, नाथ लेने वाला राजा। तो शंकर वास्तव में कोई पाप नहीं कर सकता है, हिंसक बन नहीं सकता है। आंख खोलने से ही विनाश हो सकता है क्या? कोई आंख बंद किए बैठा फिर आंख खोल दे तो ऐसे कोई विनाश हो जाता है क्या? नहीं। वो तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, बुद्धि में ये बात बैठ जाती है कि ये आतताई जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक दुनिया सुधर नहीं सकती। 500 करोड़ की दुनिया है आतताइयों की दुनिया, रावण राज्य। इस नई दुनिया में सबको रहने का हक नहीं है। नई दुनिया में कितने रहेंगे? 9 लाख, बहुत थोड़े होंगे। तो विनाश आंख खोलने से हो सकता है क्या? मनुष्य तो समझते हैं, शंकर तो विनाश करते हैं। हम भी तो लिखते हैं ना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश होता है। विनाश किसका होता है? अनेक मत मतांतरों का विनाश होता है। अनेक सच्चे नहीं हो सकते, सत्य एक होता है और झूठे झूठे अनेक होते हैं। गुरु अनेक हैं और सतगुरु सतगुरु एक है। तो जरूर जो झूठे गुरु है वो झूठे धंधे फैलाते हैं, झूठी बातें फैलाते हैं। सतगुरु एक सत्य खंड स्थापन करने वाला है, वो सच्ची बात सुनाता है। तो बोला अनेक धर्मों का विनाश होता है। अगर शंकर को नहीं देवे तो तीन चित्रों की शोभा नहीं रहती है। क्या ब्रह्मा का चित्र ही देवे, विष्णु का ही चित्र देवे और शंकर का चित्र न देवे, वहां बिंदी को रख दे तो त्रिमूर्ति की शोभा नहीं होगी। तीन मूर्ति तो है ना? क्या तीन मूर्तियां तो है ना? तीन मूर्तियां हैं, कौन कौन सी? ब्रह्मा विष्णु शंकर। वास्तव में तो ये होना नहीं चाहिए, परंतु न देखने से मनुष्य और ही मुझ जावेंगे। माने शंकर की मूर्ति को रखना जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए। वास्तव में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस सृष्टि में मूर्ति बनती है, सूक्ष्म बतन में तो मूर्ति की बात ही नहीं। और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये हैं कहाँ के? सूक्ष्म बतन वासी हैं, माने बुद्धियोग से कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म स्टेज में रहते हैं। जो सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले हैं, साकारी स्टेज में रहने वाले ही नहीं है तो उनको साकारी दुनिया में क्यों दिखाना चाहिए? इसलिए बोला वास्तव में ये होना नहीं चाहिए, परंतु न देखने से मनुष्य और ही मुझे जावेंगे। इसलिए इन तीन मूर्तियों को रखना पड़ता है। इसलिए ही तो तुम शिव और शंकर को अलग अलग करके बतलाते हो। इसलिए कि लोगों की बुद्धि में बैठे कि शिव निराकार है और शंकर साकार है। ऐसे नहीं कहते हो कि ये है ही नहीं। कौन? वो क्या कहते हैं कि शंकर है ही नहीं, और बाबा क्या कहते हैं? तुम ऐसे नहीं कहते हो कि शंकर है ही नहीं। कहेंगे कि देवताओं को भी ये उड़ा देते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बड़े से बड़े देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताओं में से, उनको भी ये उड़ाए देते हैं। डिफिकल्ट बात है ना? तुमको तो सारा चक्र बुद्धि में है। 8:61 की वाणी का दूसरा पेज। जो जो महारथी हैं, उनकी इन सभी के लिए बात है कि सबकी बुद्धि में चक्र तो है। सभी के लिए कहेंगे तो भल सुनते तो हैं पर तो समझाए नहीं सकते। समझाए कौन सकेंगे? सुनने वाले समझाए सकेंगे या समझने वाले समझाए सकेंगे? सुनते तो हैं लेकिन समझाए नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझा सकते? क्योंकि सुन लेते हैं, सुनी है सारी मुरली, लेकिन मुरली को समझा नहीं है। जब समझाई नहीं है तो दूसरों को समझा भी नहीं सकते, बुद्धि में ही नहीं ठहरता है। क्या कहा, क्यों नहीं समझा सकते हैं? शेरनी का दूध देह अभिमानी की मिट्टी रूपी पात्र में ठहर नहीं सकता। जो देह अभिमानी बुद्धि होगा ना, तो उसकी बुद्धि किस में लग जाएगी? निराकार के ज्ञान में लगेगी, या निराकार जिस साकार में आता है उस साकार में चिपक जाएगी? कहाँ लगेगी? साकार में लग जाएगी। उस साकार से कनेक्टेड जो और देहधारी है उनमें बुद्धि लग जाएगी, दीदी दादी दादाओं में। तो फिर ज्ञान बुद्धि में ठहर नहीं सकता। बुद्धि में नहीं ठहरता है तो क्या होगा? पाई पैसे के दास दासियां जाकर के बनेंगे। कहां? अगले जन्म में? नहीं, यहाँ संगम युग में ही हम देखेंगे कि जो जिनकी बुद्धि में यहाँ ज्ञान नहीं ठहरता है, सुनते तो हैं लेकिन बुद्धि में ठहरता नहीं है, समझते नहीं है, दूसरों को समझाए भी नहीं सकते हैं, तो अंजाम क्या होगा? वो इसी जन्म में हम देखेंगे कि वो दास दासी बनेंगे। ये समझना तो बहुत ही सहज है। क्या ये बात समझना बहुत सहज है? आगे आगे चल करके तुमको ये सारा साक्षात्कार होगा बुद्धि से, परंतु उस समय तो कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार होगा, कोई को बुद्धि से होगा, कोई को बंद आंखों से होगा, लेकिन कोई कुछ भी, हम कौन सी दासी बनेंगे? सब साक्षात्कार होगा। देख कर ही बाबा ताकीद करवाते रहते हैं। क्या? बाबा ताकीद करवाते रहते हैं, परंतु देखा जाता है कि ऊंच चढ़ जावे, ये हो नहीं सकता है। कौन? जो सिर्फ सुनते हैं लेकिन बुद्धि में बैठता नहीं, ठहरता नहीं है, सारा ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है, समझ नहीं सकते हैं, दूसरों को समझा नहीं सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है कि ऊंचा चढ़ जावे। साफ बर्तन ही नहीं है। कौन सा बर्तन? बुद्ध रूपी बर्तन उनका साफ नहीं है, उसमें मिट्टी, देह अभिमानी की मिट्टी रूपी कचरा भरा हुआ है, बुद्धि में कीचड़ पट्टी भरी हुई है। हर एक सेंटर में ही ऐसे कीचड़ बुद्धि वाले हैं, कोई सेंटर ऐसा नहीं है जिसमें इस तरह के कीचड़ बुद्धि वाले न हो। हाँ, करके पाई पैसे की प्रजा में आ जाएंगे, क्या रिजल्ट होगा? ऐसे भी पाई पैसे की प्रजा कौन सी होती है? फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, सेकंड क्लास प्रजा होती है, वो तो साहूकार हो गए। थर्ड क्लास प्रजा होती है, फिर फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है, जो प्रजा के भी जाकर के दास दासी बनेंगे, चांडाल बनेंगे, वो कौन सी प्रजा होगी? फोर्थ क्लास प्रजा। हाँ, करके कोई पाई पैसे की प्रजा में आ जाएंगे, इसमें तो पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ना समझा तो पिछाड़ी तक भी नहीं समझेंगे। क्या कहा? जो अभी समझाया जा रहा है और अभी समझाने से जो नहीं समझते हैं, तो समझो वो दूसरे धर्म के हैं, वो अंत तक भी समझेंगे नहीं। ना समझेंगे और ना ही किसी को समझा सकेंगे। ये तो कोई भी समझाने की बातें हैं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम्स होने चाहिए। क्या कहा? इस वाक्य को पढ़ करके ये समझ लेते हैं कि वो ही प्रदर्शनी जो देहधारी गुरुओं की बनाई हुई है, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हुए हैं, वो प्रदर्शनी करने की बात है? नहीं। क्या बात है? बड़े बड़े स्थानों पर प्रदर्शनी म्यूजियम्स होने चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी प्रदर्शनी और कौन सा म्यूजियम और किन चित्रों की प्रदर्शनी? हाँ, एक तो चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी की बात बोली है, दूसरी बात चार चित्र चाहिए सिर्फ, ज्यादा चित्र नहीं चाहिए, इससे ही नाम वाला होता है, और बड़े बड़े स्थानों पर चाहिए, उन चित्रों का प्रदर्शन भी बड़े बड़े स्थानों पर होना चाहिए, इससे नाम वाला होता है। बाबा ने कहा था कि सबसे प्रो ओपिनियन लेते हैं, वो भी निकालना चाहिए। परंतु बच्चों में तो थोड़ा सा ज्ञान आने पर ही अहंकार आ जाता है, परवाह नहीं रखते, किसी की भी सुनते नहीं है। ये तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। कौन सी? जो प्रदर्शनी में हम दूसरों को समझाएं, तो समझा, चाहे चित्रों की प्रदर्शनी हो और चाहे ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी हो, तो क्या करना चाहिए? प्रूफ ले लेना चाहिए। कोई अगर समझता है, कान हिलाता है कि तुम्हारी बात सही है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है, तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहते हैं कि अगर इस सृष्टि पर भगवान नाम की कोई साकार में चीज है तो कौन सा रूप है? दादा लेखराज ब्रह्मा ही भगवान का साकार रूप है। तो उन्हें समझाना चाहिए कि देखो, भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होती। अगर ब्रह्मा भगवान होकर के गया होता तो उसकी पूजा तो होनी चाहिए। पूजा भी नहीं होती, मूर्तियां भी नहीं बनती। कहीं देखा है कि मंदिरों में ब्रह्मा की मूर्ति रखी हुई हो, कोई पूजा कर रहा हो? दाढ़ी मूछ वाले जो भिखारी कहे जाते हैं, उनकी पूजा कौन करेगा? तो ब्रह्मा भगवान नहीं है। भगवान कौन सी मूर्तियां कही जाती हैं? विष्णु और शंकर को भक्ति मार्ग में भी भगवान के रूप में माना जाता है। तो कोई परवाह नहीं करते हैं बच्चे, किसी की भी सुनते नहीं है। ये तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। इसमें तो जांच भी करनी होती है कि समझने वाला है या नहीं। अगर समझने वाला है तो उससे प्रूफ ले लेना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। गीता का भगवान ब्रह्मा है या गीता का भगवान शंकर का चित्र है? साकार रूप में गीता का भगवान कौन है? कौन सी मूर्ति भगवान का रूप है? ये नई दुनिया तो ये पुरानी दुनिया है, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। सिर्फ समय लंबा कर देने के कारण मनुष्य समझते हैं। पहले पहले तो बाप का पूरा पूरा परिचय देना चाहिए। क्या कहा? कोई भी आए नया तो पहले पहले क्या काम करना? पहले ही चार चित्र नहीं समझाने बैठ जाना? क्या करना है? पहले पहले पूरा पूरा बाप का परिचय देना चाहिए, पूरा पूरा। वो भी ऐसे नहीं सिर्फ अधूरा परिचय दे दिया कि बाप का रूप शंकर का रूप है, ब्रह्मा और विष्णु बाप का रूप नहीं है। पूरा पूरा परिचय का मतलब क्या हुआ कि ये भी बात मान ले कि हाँ, शंकर ही परमात्मा बाप का साकार रूप है, और साथ साथ वो है कौन? अगर है तो उसका नाम पता भी पूरा मालूम होना चाहिए। अगर पूरा नाम पता लिख करके देवे, निश्चय पत्र लिख करके देवे, तो समझा जाए कि उसको निश्चय बैठे। तो पहले पहले बाप का पूरा पूरा परिचय देना चाहिए। जो जो देही अभिमानी होकर रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख भी उनको ही रह सकता है। थोड़ा भी देह अभिमान होगा सर्विस करने वाले में तो उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी। सिर्फ भाषण मात्र से ही काम नहीं होगा, कोई को समझाते समय आत्मिक स्थिति चाहिए। बाबा ने समझाया कि भाषण करते हो तो समझो कि मैं भाई को समझाता हूँ। क्या भाषण करने वाले की ये स्टेज हो कि वो स्त्री पुरुष को नहीं समझा रहा है? किसको समझा रहा है? आत्मा आत्मा भाई भाई को समझा रहा है। आत्मा अभिमानी बनना है, ये तो बहुत ही मेहनत की बात है। मौसी का घर नहीं है क्या? आत्मिक स्थिति में रहकर सबको समझाना, आंखों से देखते भी जाना और फिर उनको आत्मा आत्मा भाई भाई समझना और उसे दृष्टि से समझाना, मेहनत की बात है। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे भूल जाते हैं, बात ही आकर बच्चों को समझाते हैं। गायन भी है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका अर्थ को सब नहीं समझते हैं, तुम ही बच्चे समझते हो कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका अर्थ क्या हुआ? जो महारथी बच्चे हैं वो ही समझ सकते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत प्रैक्टिस है। तभी तुम अपन को पावरफुल समझोगे। जो अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं वो भला क्या धारणा करेंगे। हम आत्मा बाप को याद करते हैं, याद से ही जौहर भरेगा। ज्ञान का बल नहीं, योग का बल कहा जाता है। कौन से बल का गायन है? योग बल का गायन है। बाप कहते हैं कि तुम विश्व का मालिक बनते हो। कौन बनता है मालिक? वे बनते हैं या तुम बनते हो? जब तुम कहा जाता है तो किससे कहा गया? सामने वाले से कहा ना। माने बाप जिनके सन्मुख बैठता है उनसे कहता है कि तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम थे तो जरूर थे तो जरूर। ब्रह्मा के तन में बैठ के बोला तुम थे तो जरूर, तो कहां की बात हुई?
नहीं, सचिव की बात हुई।
हाँ, संगम युग के आदिकाल की बात कही कि तुम आदि में भी जरूर थे है? और फिर अब लास्ट में भी तुम जरूर रहोगे। तुम थे तो जरूर। औरों को भी आप समान बनाना है। क्या ये नहीं कि तुम विश्व के मालिक बनते हो तो तुम खुद ही बन के रह जाओ और दूसरों को दास दास ही बनने दो? नहीं, दूसरों को भी जो भी तुम्हारे सन्मुख आए उन सबको क्या करना है? कम से कम आप समान जरूर बनाना है। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है, आप समान बना। तुम राजा बनते हो तो दूसरों को भी क्या बनाओ? राजा बनाओ। जब तक बहुतों को आप समान नहीं बनाया है तो भी विनाश नहीं होगा। क्या कहा? विनाश तब होगा जब जो विश्व का मालिक बनता है वो बहुतों को आप समान बनाए। कम से कम 108 तो ऐसे निकले राजा हैं जो किसी देहधारी से लेने वाले ना हो। किससे लेने वाले हो? डायरेक्ट एक बाप से। तो आप समान बनाना है। जब तक आप समान नहीं बनाया विनाश नहीं होगा। फिर कितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगे, चाहे अफगानिस्तान की बड़ी लड़ाई लग जाए, चाहे इराक और अमेरिका की बड़ी लड़ाई लग जाए, और ये कैसी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगती रहे, लेकिन विनाश होगा नहीं। बाम्स तक भी तो लड़ाई आई है, और बड़े बड़े बाम्स कहां छूटे हैं अभी? फिर बंद तो हो गई है ना। अभी तो बहुतों के पास बाम्स है, ये कोई रखने की चीज नहीं है। पुरानी दुनिया का विनाश हो, एक आदि सनातन देवती देवी देवता धर्म स्थापन होना है, और होना ही है। क्या होना है? विनाश भी होना है और उससे पहले स्थापना भी होनी ही है। इस संगम पर ही स्थापना होती है। इस संगम पर ही दैवी राजधानी की स्थापना होती है। ये भी समझाना पड़ता है। तुम देखेंगे थोड़े समय के बाद सभी कहेंगे बरोबर ये वो ही महावारी महाभारत लड़ाई है। क्या सभी कहेंगे? माना कौन? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया वाले कहेंगे सभी, या बाहर की दुनिया वाले भी कहेंगे? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया वाले तो पहले कहेंगे कि हाँ वो ये वो ही महावारी महाभारत लड़ाई है, और वो अंदर अंदर अभी समझ भी रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? कि वो ही महावारी महाभारत लड़ाई है। भगवान है जरूर, लड़ाई भी है महाभारत, और भगवान भी भारत में जरूर है। जब तुम बहुतों को देखेंगे तब समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। ये व्रत क्या था? ये समझेंगे भी वो कब? जब देखेंगे ये बहुत हो गए, तब समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। ये वृद्धि को पाते रहते हैं। याद में तो बहुत ही मायके है। तुम जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना ताकत बढ़ती जाएगी। बाप की याद से तुम ही औरों को लाइट देते हो। हमारे अंदर ही याद की लाइट नहीं होगी तो हम दूसरों को लाइट नहीं दे सकते। बाप की याद से ही तुम औरों को लाइट देते हो। यहाँ निष्ठा में भी बैठने के लिए ला कहता है। मम्मा के पीछे कोई गद्दी पकड़े तो सभी को दृष्टि दे। क्या कहा? मम्मा शरीर छोड़ गई थी उस समय 68 में, तो कहा कि मम्मा के पीछे भी कोई गद्दी पकड़े जो सभी को दृष्टि दे, मम्मा की जगह पर दीदी है। फिर पकड़े क्यों? मम्मा की जगह पर, मम्मा के पीछे कोई गद्दी पकड़े, ये क्यों कहा? अगर मम्मा की जगह पर दीदी है तो दीदी को गद्दी पकड़ लेनी चाहिए। बाबा ने 18 जनवरी को शरीर भी छोड़ दिया। उसके बाद गुलजार दादी में पहली वाणी में आकर के बोला कि इन सभी सेवा केंद्रों की देखभाल दीदी जैसे पहले करती थी वैसे अब भी करेगी। ईशु हेड ऑफिस में लिखा पढ़ी का सारा काम जो करती है वैसे करती रहेगी। और कुमार का उसकी सहयोगी है, किसकी? दीदी की। माने हेड क्लर्क कौन हुआ? नहीं, ईशु। और कुमार का कौन हुई? ईशु की सहयोगी। तो कौन हुई? असिस्टेंट क्लर्क। असिस्टेंट क्लर्क की पोजीशन पर कुमारका को बैठाया। और मोहिनी दीदी को कहाँ बैठाया? सब सेवा केंद्रों की देखरेख के लिए। लेकिन हुआ क्या? मोहिनी दीदी को ओवर का पावर करके कुमारका दादी गद्दी पे बैठ गई। बाद में अखबारों में छपा, विदेश के अखबारों में, जगदम्बा कुमारिका। जगदम्बा का भी टाइटल अखबारों में मिल चुका है। किसको? है कुमार का दादी को। तो मम्मा के पीछे कोई गद्दी पकड़े जो सभी को दृष्टि दे, तो कुमार का ने क्या करना शुरू कर दिया? सबको दृष्टि देना शुरू कर दिया। टोली लेना है किसी को तो क्या करे? पहले दृष्टि ले, फिर उसके बाद टोली खाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने बोला मम्मा के पीछे कोई गद्दी पकड़े जो सभी को दृष्टि दे, मम्मा की जगह पर दीदी है। माने दीदी ने दृष्टि देने का काम शुरू किया नहीं था, परंतु इनको भी जाना पड़ता है। पहले ही बता दिया किनको? इन दीदी को भी जाना पड़ता है। तो कौन से सन में चली गई? 83 में दीदी ने सही छोड़ दिया। इनको भी जाना पड़ता है, मम्मा भी जाती, परंतु सीट पकड़नी होती है। क्या कहा? मम्मा की सीट पकड़नी होती है। ये दादा भी कहते हैं मेरे से भी बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कौन दादा कहते हैं? ब्रह्मा। बाबा भी कहते हैं मेरे से भी अच्छे बच्चे सर्विस करने वाले हैं। प्रदर्शनी आदमी कितनी मेहनत करते हैं, सारा दिन सर्विस करते रहते हैं। अभी थोड़ी देरी है, योग में यथार्थ रीति कोई रह नहीं सकते हैं। खुद भी फील करते हैं योग में हम कम हैं, इसलिए तीर लगता नहीं है। भगवान कुमारियों में भी बैठ बल भरते हैं, भगवान कुमारियों में भी बैठ माने कोई शरीर में प्रवेश करके दृष्टि से ही बल भरा जाएगा ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। कौन सी कुमारियां हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो सिर्फ, या प्रजा पीबी के हो, बी के हो या पीबी के हो? तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। यह ब्रह्मा, क्या कहा? यह कौन है? यह तो ब्रह्मा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो? अगर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो प्रजापिता ब्रह्मा की पहचान भी तो चाहिए ना। जो सूक्ष्म वतनवासी हो जाता है उसको प्रजापिता कहा जाता है क्या? सूक्ष्म वतनवासी बनने को बनने वाले को प्रजापिता नहीं कहा जाता। तो यह ब्रह्मा है, तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, क्रिएटर तो एक ही है। ये ब्रह्मा क्रिएशन है, रचना है, और उसको भी रचने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है। क्रिएटर एक ही है, बाकी तो सभी पढ़ रहे हैं। यह ब्रह्मा भी पढ़ रहा है। ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल। भले ये शरीर छोड़ देता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उस तन में प्रवेश करके क्या करता है? पढ़ता है या पढ़ाता है? पढ़ता है। शिव बाबा उसमें पढ़ाने वाला है। प्रवेश करके पढ़ाई, जो प्रोज और पोएट्री पढ़ी है, सुनी है, हमारी पोएट्री कौन सी है? साकार मुरली। और प्रोज कौन सी है? अव्यक्त वाणी। तो वो साकार मुरली और अव्यक्त वाणी को शिव टीचर बन करके कोई में प्रवेश करके फिर उसका क्लैरिफिकेशन देता है, समझाता है। टीचर का काम क्या होता है? प्रोज और पोएट्री को समझाना। तो तुम एडाप्टेड बच्चे हो, क्रिएटर एक ही है, बाकी सभी पढ़ रहे हैं। इसमें ये भी आ गया पढ़ने वालों में, यह माना, यह आ गया माना कौन आ गया? ये ब्रह्मा भी आ गया। 8:61 की वाणी का 3rd पेज, फिर भी ये रचना हो गए, ये ब्रह्मा आ तो गया पढ़ने वालों में, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये रचना हो गए, तुम देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हो, मेहनत लगती है। ये बात कह दी यहाँ पर, यह ब्रह्मा बन पढ़ाई पढ़ने वाला है क्या? पढ़ाई पढ़ने वाला है, पढ़ाई पढ़ता है, लेकिन ये रचना हो गए, रचना हो गए माना ये सतयुग में क्या बनेंगे? रचना बनेंगे। माना राधा कृष्ण बन सकते हैं और इनकी तरह पढ़ाई पढ़ने वाले बहुत हैं ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी जो क्या बनेंगे सतयुग में? रचना बनेंगे, लेकिन बच्चों को सतयुग के राधा कृष्ण जैसे बच्चों को रचने वाले रचयिता नहीं बन सकते। ये भी रचना हो गई ना, तुम देवता देव बनने के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हो क्या? तुम देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हो, मेहनत लगती है। किसको? इन ब्रह्मा को मेहनत लगती है या तुमको मेहनत लगती है? मेहनत किसको लगती है? सन्मुख बैठने वाले बच्चों को जो राधा कृष्ण जैसी रचना को जन्म देंगे उनको मेहनत लगती है, और जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों के रूप में जन्म लेंगे उनमें दैवी गुण तो होते ही है, आखिरी जन्म तक भी दैवी गुण होना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के बड़े बड़े सन्यासी पड़े हुए हैं जिनमें बड़े अच्छे गुण हैं, बोलने चालने रहने सहने का तरीका बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन कहें कि पावन देवता बन गए सो कोई नहीं कह सकता। तो मेहनत लगती है, कहां कहां दो फीते भी नहीं चल सकते हैं। जैसे कि रीत पड़ गई है, बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझना चाहिए बाबा सच कहते हैं, बरोबर बच्चों में अवगुण है, बच्चे भी फील करते हैं, एक दो के स्वभाव को समझ सकते हैं, जिनके साथ रहना होता है उनके स्वभाव को तो समझा जाता है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ही डबल सिरताज थे। कौन सा डबल सिरताज? सर के ऊपर डबल ताज कौन सा था? हैं? एक तो प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। ये संगम युग का हुआ, संगम युग में हमको प्योरिटी भी धारण करनी है। जितनी जितनी आत्मा में प्योरिटी आती जाएगी, आत्मा में प्योरिटी आने के कारण रिजल्ट क्या होगा? आत्माएं स्वतः ही हमारी तरफ आकर्षित होंगी। प्योरिटी जो है वो हमेशा इम्प्योर को आकर्षित करती है, इम्प्योरिटी आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन प्योरिटी अगर किसी में होगी तो दूसरों को आकर्षित जरूर करेगी। अधर कुमार भी होते हैं, अधर कुमारियां भी होती हैं, कुमार भी होते हैं, कुमारियां भी होती हैं, उन चारों के बीच में सबसे ज्यादा बुद्धि का आकर्षण सबका किस तरफ जाता है? बाबा का भी आकर्षण किसकी तरफ जाता है? हैं? कुमारियों की तरफ जाता है। क्यों? प्योरिटी है तो जाता है। तो बोला, अभी तुम बच्चे समझते हो, हम ही डबल सिरताज थे, अभी नहीं है। पहले कोई टाइम था कि हम डबल सिरताज थे। कौन कौन सा ताज? प्योरिटी का भी ताज हमारे में था, और हमने पूरी जिम्मेवारी नई दुनिया को स्थापन करने की धारण कर रखी थी। अभी हम फिर ऐसे बन रहे हैं, बने नहीं है क्या? ऐसे हम बन रहे हैं। पहले पहले तुम किसको समझाते हो तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें बुद्धि भी बहुत चाहिए, आत्मा में बुद्धि है ना। कहते हैं सत्य चित्त आनंद, तुमको अभी देही अभिमानी बनाया जाता है, जब तक बाप ना आए तब तक कोई देही अभिमानी होता ही नहीं क्या ऐसे नहीं कि बाप आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला जाता है तो देही अभिमानी अपने आप बन जाते हैं। नहीं, बाप को इस सृष्टि पर देही अभिमानी बनाने के लिए मौजूद होना चाहिए। सभी देही अभिमानी है, देहाभिमानी है। अभी बाप कहते हैं तुम आत्माभिमानी बनो, माम एकम याद करो तो तुमको मेरे से शक्ति मिलेगी। शर्त क्या लगा दी? मुझे एक को याद करोगे तो शक्ति मिलेगी, और मुझे एक के साथ साथ दूसरों को भी याद करते रहे तो शक्ति नहीं मिलेगी। क्या शर्त लगा दी? मुझे एक को याद करो। एक को याद करो माने बिंदी को याद करो। बिंदी बिंदी तो ढेर सारी आत्माएं, कौन सी बिंदी को याद करें? है शिव बाप को? शिव बाप का नाम ही तो बिंदी है, उसी बिंदी को ही तो शिव बाप कहा जाता है। जब कहते हैं मुझे एक को याद करो तो कहने वाला जो मुख से कहने वाला है ना कोई, तो जरूर कोई शरीरधारी है। मुझे एक को याद करो तो तुम देही अभिमानी बनेंगे। माम एकम याद करो तो मेरे से शक्ति मिलेगी। ये धर्म बहुत ताकत वाला है। सारे विश्व पर राज्य करते हो, ये कम बात है क्या? कौन सा धर्म बहुत ताकत वाला है? देवी देवता सनातन धर्म, जो संगम युग में सारे विश्व के ऊपर, सब धर्मों के ऊपर कंट्रोल करने वाला है, वो बहुत ताकत देने वाला है। ये नई बात है, तो अच्छी रीति समझनी पड़ती है। आत्माओं का बेहद का बाप वो है। क्या कहा? यह नहीं है, इसको तो सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अपना बाप मानते हैं, लेकिन सारी सृष्टि का बेहद का बाप वो है। आगे की तरफ इशारा किया, वो है ही नई दुनिया का रचयिता। नई दुनिया में इन्हों का राज्य था, अब नहीं है। फिर आकर के जरूर देंगे। कौन? नई दुनिया का राज्य कौन देंगे? बाप सुप्रीम सोल तो देंगे, लेकिन किसके द्वारा देंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा देंगे। माना लक्ष्मी नारायण का रूप भी हमारे सामने आएगा, जो नई दुनिया बनाने का निमित्त बनेगा। उनके जन्म की तारीख कौन सी बताई? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष पूर्व। बाबा जिंदा थे तब ये बात बोली थी, तो उसमें से 10 वर्ष अगर कम कर दिए तो कौन सा सन आता है? 66 नहीं आता है, उस समय तो बोला ही था। 76 आता है। मना उल्टा चक्कर घुमाओ, उसमें से 10 वर्ष कम कर दो तो 76 आएगा। तो आकर फिर वो ही जरूर देंगे, नहीं तो विश्व का ऑक्यूपेशन बताओ।